devotees to think that the rhythmic arrangement that Prabhupada made while he was here should have somehow be continuing on after his departure. Am I saying it correctly? I'm taking it further.
What I'm saying is that I see a number of different ways that his disciples have said to carry on the movement.
Oh.
And so that's one of them, the rhythmic idea. Then the other one is that his disciples, like Bhagavan, have also started to become gurus. And so I'm confused as to what do you think Srila Prabhupada wants.
What is your opinion? She wants clarification. She sees many different expressions on different devotees how to continue the movement. Some have become gurus. Some gurus do one way, some gurus do another way. Some gurus say, I'm infallible, Mahabhagavat. Some gurus say, no, I'm servant of the devotees, I'm doing the best I can. Other people say, no gurus at all, we must have rhythmic system. Prabhupada is eternal guru or yogacharya for all Kali Yuga. Other people do. There are so many different ways of approaching it, and it's confusing for the different devotees.
Had this answer in Swamiji's book. He has written everything. He has never told he was in our root line, root person, in the line of Chaitanya Mahaprabhu. So Mahaprabhu, neither Rupa Goswami, now after that any acharya has written about Ritvik. Ritvik is only accepted in sacrifice form, not in this. Also, Swamiji made so many decisions, and their modes are different. But Swamiji's mode was one. We should try to realize that. So, I think I reject, or all acharyas have rejected this rhythmic. Rhythmic means that I am not accepting any guru, but I am. This is good. So, we should not go far. But we should pray to Krishna that all Krishna, you should arrange me a very bona fide guru. You are guru, Kshatriya guru, but even you can arrange for me. And that is why Krishna has arranged to send Swamiji here. Gurus are very rare. Swamiji knew. You are Sarvajna. Sarvajna means?
No.
But he knows that, and he has told also like all gurus that Koti Swami Mahamune and crores and crores real Koti and Guru are very rare. So if I have collected a very rare one or two disciples, I am satisfied and they will teach. Whether they are Grihastha or Gyanis, no difference. It may be they all sannyasi or been called in worldly life. But yet, I know so many devotees, so they are very sincere and senior. They are following some. So, I know that this Sanatana Dharma of love and affection, given by Krishna, given by Chaitanya Mahaprabhu and all, it cannot be never. It will never be this. So don't be hopeless. There must be some devotees. Not so much. So we should have so much faith in Krishna and Mahaprabhu and all that anyone will come. If you are sincere, then Guru will come. If you have more questions, you can come another time at his hard
spot. Maharaj has to, he's already quite late for a
very late, some morning.
Program, so. we have to ask everyone to say goodbye for now and leave so that we can do this.
Kurpivanandi. Jnanam jana salakaya chakshurun militam yena tasmai shri gurave vancha kalpa sarubhyascha sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo mahavadannaya krishna prema pradayate krishnaya tanna namne gaurati gurave gaurachandraya radhikaya itadalaya krishnaya krishna bhaktaya adabhaktaya namo yam yam pram pravajante te tamapet krityam dvaipayano virahaka sarayajubha putre titanmetaya sarvo ginedu संसर्वभूतहृदयम् भक्त्या विघ्नापराधलक्षित्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते शरणम्। मैं सबसे पहले अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के चरण में कोटि कोटि अपना दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ, जिन्होंने भक्तिवेदांत स्वामी तथा आप लोगों के प्रभुपाद जी को संन्यास दिया था मथुरा में। और मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी को भी उसी तरह से कोटि कोटि बार उनके चरणों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। शायद आप लोग जानते होंगे कि 1946 से ही हमारा संपर्क स्वामी जी से था, हमारे पास में ही आकर के घर छोड़ करके हमारे पास रहे, वहीं उन्होंने संन्यास लिया और मैंने उनकी सारी पुस्तकें और सारी कुछ मृदंग खोल करताल यहाँ तक कि विग्रहों को भी मैं हाथ से उनके पास में पहुँचाया। अंतिम समय में उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आप हमारी यदि कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे और हमारी अंतिम समाधि आप ही के हाथों से होनी चाहिए। और मैंने अपने हाथों से ही वैदिक रीति के अनुसार में उनको समाधि दी। उनका अंतिम विरह महोत्सव भी वहाँ पर मनाया गया हमारे ही सुपरविजन में। उन्होंने मुझे ये कहा था कि हमारे बच्चों को आप सहायता भी देंगे, उनको शिक्षा भी देंगे। हमको उन्होंने अपने समय में अपने साथ में अमेरिका इत्यादि प्रचार में हमको साथ में लाना भी चाहते थे, किंतु मैं अपने गुरु जी की सेवा में उस समय संलग्न था इसलिए कुछ देर हुई आने। मैं तो ये समझता था कि मैं यदि लॉस एंजल जाऊंगा तो आप लोगों की छत्र छाया में दो चार दिन यहाँ पर रह जाऊंगा, किंतु किसी कारण से ये संभव नहीं हुआ। किंतु आप जब मैं फिर आऊंगा अंततः चार पांच दिन के लिए एक अतिथि के रूप में भी आप लोग हमें रख सकते हैं। भारतवर्ष एक अतिथि प्रधान देश है, अतिथि देवो भव। इसलिए यदि कोई भारत का अतिथि भी आ जाता है तो उसको रखने में कोई इच्छा नहीं। और मैं आप लोगों से, प्रवासी हमारे अपने भाई हैं, हम लोग अपने एक फैमिली के हैं, एक वैदिक कल्चर के हैं, इसलिए हमको आप लोगों के निकट में रहने में भी पसंद आता। मैं अधिक समय न लेकर के मैं फिर अपना वक्तव्य मैं आरंभ करता हूँ कि हमारे ब्रह्मा से लेकर के नारद से लेकर अब तक स्वामी जी तक हमारे गुरुदेव तक भक्ति का प्रचार करना ही जीवन का उद्देश्य है। हम लोग भूल करके, भगवान को भूल करके इस जगत में कोटि कोटि जन्मों से, एक दो जन्मों से ही नहीं, कोटि कोटि जन्मों से कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी देवता, कभी गंधर्व, कभी राजा, कभी प्रजा, कभी दरिद्र, कभी चींटी, कभी पशु इत्यादि के जन्मों में घूम रहे हैं सुख के लिए। किंतु हम लोग अभी तक सुख से प्रसन्न नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो सके, न जाने फिर न जाने कौन सी जोनी मिले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए व्यास जी ने नारद जी की कृपा से, अपने गुरु जी की कृपा से श्रीमद् भागवत संहिता का अपनी समाधि में दर्शन किया और जीवों के कल्याण के लिए इसको अक्षरास्पद रूप में, अक्षर ब्रह्म के रूप में इसका संपादन करके जगत में इसको बताया। तब से जगत में इसका प्रचार चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु जी ने इसे प्रमाणित माना और अपने जीवन में इसका आचरण किया। हम उसमें से दो एक बातें आप लोगों को मैं इसमें से बतलाऊंगा। सबसे पहले ये निश्चित धारणा रखेंगे कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और जितने भी भगवान के अवतार निकले हैं ये सब कृष्ण से ही है, इसमें कोई शंका मत करेंगे। क्योंकि व्यास जी, नारद जी, पराशर जी, परीक्षित महाराज, स्वयं के चैतन्य महाप्रभु इत्यादि कह रहे हैं कृष्ण और उस भगवान को पाने के लिए, नित्य सुखी होने के लिए एकमात्र भगवत भक्ति ही पथ है, दूसरा कोई पथ नहीं है। और वो भक्ति कैसे आएगी, एकमात्र पथ है संतों का संग, बिनु सतसंग न पावहि जानी। बिना भगवत भक्तों के, जो हम लोगों से ऊपर स्टेज के हैं, जिनको अनुभूति नहीं है, जैसे स्वामी जी यहाँ एकले आकर के सारे विश्व में भक्ति का प्रचार किया, वो यदि कृपा करके न आते, कृष्ण और या चैतन्य महाप्रभु उनको नहीं भेजते, प्रेरणा नहीं देते, नहीं आते, आज सारे विश्व में जो भक्ति का प्रचार हो रहा है, सभी लोग नाम संकीर्तन कर रहे हैं, ये संभव पर नहीं। इसलिए साधु संग, साधु संग, साधु संग, लौ मात्र साधु संग है इस संग। साधुओं के संग से मनुष्य का, हाथी, सिंह, भालू, पशु, पक्षी, कीट, गंधर्व, राक्षस, राक्षसों में विभीषण जैसे लोग हनुमान जी की कृपा से कैसे बन गए, बंदरों में सुग्रीव, ये सब साधु संगों का फल है। अरे सबरी जैसी एक ढीलनी, कुछ भी नहीं जानने वाली और भगवान को वशीभूत कर लिया, सत्संग का प्रभाव था। इसलिए बिनु सत्संग न पावहि जानी, यह भगवत भक्ति संसार में बहुत रेयर है, किंतु सत्संग के द्वारा इसको पाया जा सकता है। कैसे पाया जा सकता है, यदि महाभागवतों के मुख से, सुखदेव गोस्वामी जैसे लोगों से जिनको संसार की कोई भी तमन्ना नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, वो समझ चुके हैं कि संसार क्या है, छायाबाजी की तरह, छायाबाजी मैंने
जलाते हैं,
छोड़ते हैं ना, आकाश में गुब्बार रहे, तबर रहे और एक मिनट में फिर धंस हो जाते हैं, संसार का सुख है। संसार पर में आपने मनुष्य जीवन में सैकड़ों वर्षों में, एक सौ वर्ष की आयु में आपने जो कुछ कमाया, अंत में सबको छोड़ छाड़ करके जाना होगा, एक कपट तक या शरीर एक ये भी नहीं लेकर के जाना है, इस चीज को समझना है। यदि भगवान का भजन किया तो ये आपके साथ में जा करके आपको कुछ कंसेशन दिला देगा, या भगवान की सेवा में नियुक्त कर सकता है। इसलिए भगवान की जितनी भी चीजें हैं उसमें सत्संग में हरि कथा, भागवत की कथा होनी चाहिए। सतंग प्रसंग मम विद्य संविदौ पवन तेरित कारण रसायन कथा सज्जो सनात आशु अपवर्मवत्मनि सिद्धार्थी भक्ति अनुक्रमिष्य। सत्संग में यदि श्रीमद् भागवत का, चैतन्य चैतामृत का श्रवण किया जाए तो बहुत सहज रूप में, बिना पैसे के, बिना किसी एनर्जी दिए हुए, सहज स्वाभाविक रूप में हम भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति फिर भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति लाभ करके ही संसार को छोड़ करके सदा के लिए कृष्ण सेवा में नियुक्त हो सकते हैं। मैं श्रीमद् भागवत को प्रसंग आपको बतला रहा हूं। इसमें से सीखने की चेष्टा करेंगे, ग्रहण करने की चेष्टा, यदि अच्छी लगे तो, और न लगे तो कोई बात नहीं। मैं अपनी दुकान में जो रहने वाले जो फल है मैं उनको ले करके वृंदावन में फिर लौट जाऊंगा, यदि ले लिया अच्छा है, और बिना मूल्य का दूंगा फ्री, कोई पैसा नहीं चाहता, उसके बदले में कोई भी हमारा वांछ नहीं है। वृंदावन से सुंदर मीठे मीठे फल ले आया हूँ अपनी टोकरी में, यदि आप लोग लेना चाहेंगे तो उसे ले लें, और नहीं पसंद हो तो जैसे कि दूध गली गली जाता है कोई नहीं लेता, और लीकर के दुकान में, शराब की दुकान में इतना भी बचता नहीं है, यदि कोई दूध फ्री भी बांटे तो नहीं लेंगे, कोका कोला ले लेंगे बहुत आसानी। तो इसलिए मैं मधुर मधुर ये जो वृंदावन से जो फल ले आया हूँ उसको यदि लें ठीक है, और नहीं तो मैं अपना लौटा करके वृंदावन में ही चला जाऊंगा, वहां पर बहुत ग्राहक है और वहां पर मूल्य भी बहुत है, वहां पर मूल्य देने पर भी बहुत सारी चीज जाता है। नारद जी की शिष्य ब्रह्मा जी के पास गए, काजी ब्रह्मा जी उनको प्रणाम किया और बोले मैं एक बार पृथ्वी लोक में गोकुल में गया और वहां पर एक नंद भवन में एक नंद गोप के घर में एक बड़े सुंदर लड़के को मैंने देखा, उसको देखने से चित्त को वो हर लेता है, बहुत छोटा सा, सिर पर मोर मुकुट, अथरों पर बंसी, पीतांबर कपड़े पहनता है, बड़ी लोभनीय दृष्टि से देखता है, एक बार यदि कोई भी देखा बस उसका वो हो जाता है, उसका दिल चुरा लेता है। जन्म के दो दिन बाद ही कंस की भेजी हुई पुतना गई और सहजी रूप में उसके काल को बीस स्तन से पीकर और उसे कहा माता की गति दी। मैंने ये भी देखा और सुना कि कंस ने उसको मारने के लिए बहुत से अस्त्रों को भेजा जो कि हवा बन करके गए, कोई बिना देखे हुए जाकर के गाड़ी में प्रवेश हो गया, कृष्ण को पिचकना चाहा, कुचलना चाहा, किंतु जो गया वो संवाद देने के लिए लौटा नहीं। मैंने ये भी देखा कि अब थोड़ा सा बड़ा हो जाने पर छोटे छोटे बछड़ों को लेकर और हजारों दाम सिदाम सुदाम बसुदाम स्तो कृष्ण लवंग अर्जुन उज्जवल मधुमंगल इत्यादि सखाओं को लेकर एक बन से दूसरे बन से जाता है। कैसे जाता है? बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम पृपत पास कनक कपिशम वै जयंती क्षमाला रंध्राण वेणु रथर सुधया पूरयन गो गोविंदई बिंदारण्यम सबदरमणम प्राविशत। और बिजली के समान पीताम्बर उसके सहारा है, मानो उसका शरीर कैसा है मेघ के समान में नील वर्ण का है, बंसी तो मानो कमाल करती है, सखा लोग चारों तरफ से उसे घेरे रहते हैं, जय कन्हैया लाल की कहते रहते हैं, और लाखों गायें उसके पीछे आगे पीछे बाहर में इधर उधर दौड़ती रहती हैं, और उन गायों को लेकर के एक सुंदर वृंदावन के वन से दूसरे वन में जाता है, जहाँ जाता हिरण भी उसके मुख के तरफ में कर करके उसे प्रणय की भिक्षा मांगते हैं, प्रणय माने प्यार की भिक्षा मांगते हैं, अपना वो मुख नहीं हटा सकते, नेत्र उनके मुख से नहीं हटा, मेघ उन पर उमड़ घुमड़ कर सुशीतल जल की वर्षा करता है कि हमारे प्रेम मित्र आ गए, यमुना नदी समझती कि हमारे प्रियतम आ गए, और अपने हाथ रूपी तरंगों से उनके चरणों में कमल की पुष्प को देती हैं। आपको पता है ये सब चीजें, मैं भूल गया था, तुमने याद दिला दी, मैं अभी जाता हूँ, कल ही जाऊँगा, जब गोचारण करने के लिए जाता है ब्रह्मा जी, दूसरे दिन वहाँ उपस्थित हुए ब्रजमंडल में, आकाश मंडल में देख रहे हैं ये कृष्ण ऐसे ही गायों को लेकर के जा रहा है चराने के लिए। जाते जाते उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा भारी सांप अजगर है, 6 मील लंबा और 1 मील चौड़ा और 1-2 मील ऊंचाई में, और उसने ऐसे मुख को किया है जैसे एक मुख पृथ्वी पर और दूसरा उसका होठ आकाश में ऐसे लगा हुआ है, मानो पर्वत हिमालय पर्वत की कोई मिल हो, लंबी चौड़ी कोई गुहा हो। सामने में कालीन लाल बिछा हुआ है, कालीन नहीं है वो जीभ उसकी है, और उसके भीतर से बड़ी दुर्गंध आ रही है क्योंकि कितने जानवरों लाखों जानवरों को अपने पेट में रखा है और आग भी इसकी निकल रही है। सखाओं ने देखा, ब्रह्मा जी ऊपर में देख रहे हैं और भी देवता लोग ऊपर में हैं, देवियां वहां पर चारों तरफ से कृष्ण की लीला को देखने के लिए आकाश मंडल में परिव्याप्त है विमानों पर, और उसी समय में ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि सखाओं ने देखा, उन्होंने कहा अरे ये क्या, ये पर्वत तो मानो सांप के समान है, ये तो भारी कंगरा जैसा इसमें है, ऐसा मान लगता है कि अजगर किंतु है ये पहाड़ की कंदरा, चलो भीतर में जरा देखाए। तो कृष्ण थोड़े से पीछे थे, बछड़े आगे थे और ये सखा लोग। एक ने कहा कि भाई यदि कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो, यदि असुरों की माया हो तो, अरे कन्हैया तो है पीछे क्या बात है, कल कोई बात। और उस दिन बाई चांस बलदेव जी साथ में नहीं थे, खेलते हुए बांसुरी बजाते हुए और सिंगा बजाते हुए लोग आगे बढ़े, पर्वत की कंदरा में ज्यों ही, माने सांप के मुख में ज्यों ही वो जा रहे, वो कृष्ण को मारना चाहता था, यही अघातुर था। अघातुर माने क्या, अघ की मूर्तिमान मूर्ति, पाप होते हैं जितने, समस्त पापों को ब्रह्म हत्या से, गो हत्या से, मातृ हत्या से, गुरु पत्नी की हत्या व्यभिचार से, जितने भी बड़े से बड़े पाप हैं वो सब का वो मूर्तिमान विग्रह था। कृष्ण को कंस के मित्रता के नाते मारना चाहता था, कंस ने उसे भेजा था, इसलिए बच्चे जब प्रवेश करने लगे कृष्ण ने देखा बहुत दूर, अरे है ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनको बोल करके रोकना चाहा किंतु जरा दूर थे इसलिए नहीं रोक सके। इतने में ये लोग प्रवेश करके बछड़ों के साथ में सारे सखा लोग, और प्रवेश करते ही उसके भयंकर विष की सुगंध से, गंध से सारे बच्चे मूर्छित होकर के वहीं पर बैठने पड़े, किंतु उसने अपना मुख बंद नहीं किया, अभी असल शत्रु तो आया नहीं इसलिए मुख को खुला रखा। कृष्ण ने देखा कि भाई तो जल्दी से प्रवेश करके बच्चों को और बछड़ों को बचाना है, भीतर में प्रवेश हुआ। जब प्रवेश किया तब जब अपना मुख, बस काम समाप्त, अभी मैं अपने स्वामी को अभी खबर देना है जैसे वो आपका शत्रु नष्ट हो गया, और जय ही बंद किया कृष्ण की अमृत भरी दृष्टि से सारे बछड़े और बच्चे जीवित हो गए। और इधर में कृष्ण एक लाल लोहे की गोले की भांति, जलते हुए अंगार की भांति उसके गले में, अब वो भीतर भी सांस नहीं ले रहा, ऊपर भी नहीं, भई गति सांप छुछुंदर तेरी, किसी सांप ने छुछुंदर को अपने गले में ले लिया, न भीतर ले जा रहा न बाहर, वही पच्छर पक करके मर जाता है, ऐसे ही गले में कृष्ण रुद्ध हो गए। अब बाहर न जाए न भीतर न सांस ले सके न प्रश्न, मिनटों में उसकी आंखें एकदम निकल आई, और साथ ही साथ में उसके प्राण निकलने लगे, ब्रह्म रत्न उसका फट गया, ए बैठो बैठ जाओ,
धन्यवाद, सिट डाउन प्लीज।
अब जब यहां पर अटक गया तो सांस नहीं ले सका, छटपट छटपट कर छट कर ऐसे करने लगा, और साथ ही साथ में उसके प्राण यहां से फट गए और निकल गए। जो भी लोग समाधि में अपने चित्त को पवित्र कर लाखों वर्ष तक तपस्या करने पर भी जिस कृष्ण को अपने ध्यान में भी नहीं ला सकते, आज देखो तो कृष्ण की ऐसी कृपा, जो अघासुर के पेट में चले गए अकेले नहीं, लाखों करोड़ों सखाओं और बछड़ों के साथ और स्वयं चले गए अपने स्वरूप से, ये किस पुण्य का फल है विचार करें। हाँ, ये कोई पुण्य का फल नहीं है, एक चीज का फल है। क्या?
उतना
ने मैया का वेश बना करके के, अरे बेटे 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 लाला लाला, और का करके कृष्ण मुख के मुख में जो बीस दिया, ये वेश जो बनाया, ये वेश बनाने का फल है। और यदि सचमुच में कोई भगवान के प्रति ऐसा भाव था तो उसके लिए बात की क्या। अघासुर ने कोई तपस्या नहीं की, कोई भजन नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, केवल उसकी बहन होने के नाते उतना, और देखो ये कैसी गति हो गई। इसी तरह से भगवान के भक्तों के प्रति यदि वेश भी बनाया, गले में तुलसी भी ले लिया, तिलक भी यदि कर लिया, जम उसको कभी देख नहीं सकता, भूल से भी जाकर के राधा रमन जी को प्रणाम कर लिया, स्वामी जी को प्रणाम कर लिया, अनजाने में ही मंदिर की परिक्रमा कर लिया, जम की हिम्मत नहीं जो आपके आपास में आ जाए। ये अजमाई हुई चीज है, परीक्षा की चीज है, इसमें कोई डाउट मत करो, कोई भी डाउट मत करो। इस तरह से ब्रह्मा जी ने देखा तो उसका ये फट गया, और देखो तो आज तक मैं जिस प्रभु को अपने ध्यान में नहीं पाता, और ये प्रभु अपने बच्चों के साथ अपने सखाओं के साथ में इसके पेट में चले गए, हृदय में, हम तो धारणा नहीं कर सकते। इतने में देखा ये फट गया, उसकी आत्मा निकली और आकाश मंडल में बिजली की भांति घूमने लगी। घूम किस लिए रही है? कोई कारण है। इतने में कृष्ण ने उसके मुंह को फाड़कर और उसमें से स्वयं बछड़ों को निकाला और सखाओं को निकाला, जो ही निकले तो ही ज्योति जो घूम रही थी, घूमती घूमती चक्कर काटती हुई कृष्ण के अंगूठे में, पैर के अंगूठे में समा गई, प्रवेश कर। भगवान जी देखो तो एक तो उसके पेट में गए, उसे पवित्र कर दिया, और फिर वो भगवान के चरणों में ही लीन हो गया। इसको कहते हैं मुक्ति। कृष्ण इतने बड़े दयालु, ऐसे असुर को जो उनको मारना चाहता था तो भी उनकी चिंता कर रहा था, वो कब आएगा कृष्ण, कब आएगा कृष्ण, कब आएगा कृष्ण, कब उसे मैं मारूंगा, कब उसे निगल लूंगा, इस चिंता के कारण प्रभु उसके अंदर में गए, उसको पवित्र कर दिया और साथ साथ में इसको मुक्ति दी। मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक तो होती है जो भगवान में मिल जाए एकदम, और भगवान मिल जाए अहम ब्रह्मास्मि शिवो अहम, बहुत खतरनाक है ये जीवन को चौपट कर दे। भगवान के भक्तों को दिए जाने पर भी भगवान से भक्त लोग नहीं लेते, दियमान पिना ग्रहण पिना मत सेवनम जना, भगवान कहते ले लो मुक्ति, भगवान ने कभी नहीं, खबरदार हमको मुक्ति नहीं, आपकी चरणों की सेवा चाहिए, हम जहां भी रहें विश्व में, कहां भी जन्म हो हमारा, पशु पक्षी के कीट के संघ के रूप में, चाहे तीर्ण गुल्म के रूप में भी हमारा जन्म हो जाए, बस आपके भक्तों के यहाँ हम जन्म लेना चाहते, हम मुक्ति नहीं चाहते। और एक मुक्ति होती है प्रेम सेवा युक्त, जैसे नारद जी, जय विजय जी और जो भक्त लोग वहां पर रहते हैं, ये सब मुक्ति होती है उनकी सेवा, ऐसे लोग भक्त लेते। किंतु ब्रज के भक्त लोग ये भी नहीं लेना चाहते, वो क्या चाहते हैं, ब्रज में हम तृण गुण लता हुए, गोपियों की चरणों की धूली को हम स्पर्श कर सके, बस हम यही चाहते हैं, कृष्ण की राधा कृष्ण की सेवा हम चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते हैं। हमारे जितने भी आचार्य लोग हैं यही चाह, ब्रज में राधा कृष्ण कंजूल की हम सेवा किसी प्रकार से पा जाए। राधा कृष्ण प्राणो युगल राधा कृष्ण। सौभाग्य हो राधा कृष्ण जुगल ही हमारे प्राण हैं, लाइफ एंड सोल। इनके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता। आ कब जीवन हमारा होगा ऐसा सौभाग्य होगा। जमुना के किनारे जो इठलाती भी चल रही हैं, बह रही हैं, सामने सुंदर कदम्ब और तमाल के वृक्ष हैं, बेली चमेली खिल रही है, कमलों पर भौरे मड़रा रहे हैं और वहां पर राधा कृष्ण जी का बिहार का स्थल। हम कब उनकी सेवा करें? ऐसी संभावना है। वो खोज करके दिन रात इसी की चिंता करता रहता है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने देखा, भाई ये कैसे ये मिल करके आकाश मंडल में होकर क्या और उनके चरणों में ये प्रवेश कर गया। वो कितना बड़ा भारी सौभाग्यवान है। हम देखते हैं कि लाखों लोग लाखों वर्षों तक कृष्ण की आराधना करके उन पर ऐसी नहीं कृपा। बड़ी आश्चर्य की बात है। मैं कुछ ऐसा करूं जो इनकी और दो एक लीलाएं देखूं, कितनी मधुर लीलाएं हैं। इसलिए उन्होंने ज्यों ही ऐसी की तही जोग माया ने एक अपूर्व खेल खेला। खेला क्या? कृष्ण के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, भक्तों के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। वे लोग गधे धेनुकासुर हैं जो कृष्ण पर भी कंट्रोल करना चाहते हैं, भक्तों पर कंट्रोल करना चाहते हैं। इसलिए बलदेव रूप गुरु ने धेनुकासुर का उनके लोगों का वध किया। इसलिए ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मैं यदि कुछ ऐसा कर दूं जिससे कि इनकी कुछ और मधुर लीलाओं को मैं देख सकूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। जोग माया ने साथ ही साथ में कुछ उनके अंदर में काम करना आरंभ किया। क्या? कृष्ण ने देखा वो ब्रज की जितनी भी माताएं हैं, वो माताएं चाहती हैं कि मैं उनका पुत्र हूं। वो अपने बेटों से भी मुझे प्यारा भी करती हैं। इसलिए उन्होंने देखा कि कृष्ण हमारे घरों में चोरी करने के लिए आता है मक्खन। कृष्ण जाते हैं और उनकी मधुर मधुर लीलाओं को वो देखती हैं, सोचती हैं कि जब से ये कृष्ण का जन्म हुआ है हमारे घरों में मक्खन इत्यादि के लिए आता है, तब से न जाने ब्रज में कितना गुना मक्खन बढ़ गया, गायों का दूध बढ़ गया, धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। भागवत में लिखा, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा स्वस्वदस्त्रहि दयित देशता दिक्षु सावका स्वैत्रिता सव स्वाम पिचनि तव कथामृतम् साप्त जीवनम् कपिधिरीरितम् कल्मषाप श्रवण मंगलम् श्रीमदाततम् कहते हैं कि जब से कृष्ण का ब्रज में आए हैं, ब्रज धन धान्य और प्राकृतिक सौंदर्य से भर गया है, तो गायों में दूध क्यों न बढ़ जाए। वहां की एक एक गोपियां कोटि कोटि लक्ष्मी से भी अधिक श्रेष्ठ हैं। केवल लक्ष्मी नहीं, उनके अंगों से कोटि कोटि लक्ष्मी झरती रहती है, ऐसी वहां की गोपियां हैं। तो क्यों नहीं वो सब कृष्ण का वो दर्शन करके अघासी नहीं है। इस तरह से ब्रह्मा जी सोच रहे हैं। जोग माया ने देखा कृष्ण की ये इच्छा है कि जितनी भी ब्रज में माताएं हैं छोटी छोटी अपने बेटों से मुझे अधिक आदर करती हैं और चाहती हैं कि हमें उसका स्तन पान करूं, तो मुझको ऐसा करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करता तो ये यथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथा वो भजाम्य हम, जो जैसा हमारा भजन करता हम करते हैं उसको उसी के रूप में उसका प्रतिफल नहीं दूंगा तो मैं अकृतज्ञ हो जाऊंगा। तो मेरी वेद की प्रतिज्ञा गीता की प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। जो जो कामना लेकर के हमारी जैसी भजन करते हैं ठीक उसी रूप में भगवान उसको पूर्ण करते हैं। जैसे निराकार रूप में कोई भजन करता है तो उसी रूप में मैया के रूप में तो मैया, यदि कोई मित्र के रूप में भजन करना चाहता है तो मित्र, जो जिस रूप में चाहेगा उसी के रूप में वो कृष्ण मिल जाते हैं। राम के लिए संभव पर नहीं है और दूसरे अवतारों के लिए संभव नहीं, ये तो केवल राधा रमन जी का ही ये कृपा से संभव। इसलिए कृष्ण ने सोचा कि इनकी हम इच्छाओं को कैसे पूर्ण करेंगे, इन सबका बेटा मुझे होना है। दूसरी बात एक और, ब्रज की जितनी भी लड़कियां हैं जिनका विवाह हो गया है जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो सभी क्या चाहती हैं? कृष्ण ही हमारे बर हों, कृष्ण ही हमारे प्यारे हों, प्रियतम बने। हाँ, आप लोग कृपा करके थोड़ा सा और आगे आ जाइए, काफी जगह है, काफी लोग आना चाहते हैं, बहुत जगह है, आप लोग और झिझक आइए, आप लोग सब चले आइए, बहुत जगह, जो दिल दिल में प्यार है तो काफी जगह है। तो कृष्ण मेरा प्रियतम हूँ, कृष्ण ही हमारे प्रियतम, तो भला उनकी इस इच्छा को कैसे, ये राम तो है नहीं जो बस एक सीता का अतिरिक्त और नहीं, और सीता जी को भी निकाल दिया घर से, कृष्ण ऐसे नहीं, हमारे बड़े रसिक हैं, रसो वही सह हैं। इसलिए जो कोई भी इच्छा करते हैं, जो कोई इच्छा करे वो कृष्ण जरूर पूर्ण करते हैं। इसलिए सोचा जी जितनी ब्रज की लड़कियां हैं कुमारियां हैं जो भी हैं उन सबकी इच्छा को पूर्ण कर। एक बात और भी हुई, रामलीला में जनकपुर की जितनी भी राजकुमारियां थी सीता का राम के साथ में विवाह होते देख करके उनको लोभ लग गया, वर मिले तो ऐसा ही, हे प्रभो हे भगवान हमको ऐसा ही वर दीजिए राम जैसा, तो राम जैसा वर कहाँ मिलेगा, तो राम को ही आना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण ने मन ही मन में उनकी भावनाओं को देख करके कहा जी देखो मैं द्वापर युग में कृष्ण होकर के आऊंगा और तुम्हारी सारी लोगों की इच्छाएं पूर्ण करूंगा, इस राम के रूप में मैं ना ज्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता एक सीता के अतिरिक्त, उनको भी छोड़ना पड़ेगा किसी मर्यादा की रक्षा के लिए, हृदय से तो नहीं छोड़ सकूंगा किंतु बाहरी तरह से हमको कुछ लोक शिक्षा के लिए ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए वो जितनी थी और दंडकारण्य में 60,000 ऋषि कृष्ण की को अपना प्रियतम बनाने के लिए गोपी भाव को प्राप्त करके गोपी भाव से कृष्ण की सेवा करने के लिए आराधना कर रही थी। 60,000 कितने वर्षों से, लाखों करोड़ों वर्ष। बाई चांस रामचंद्र जी आए दंडकारण्य में गए और उनके भावों को देख करके उनकी प्रार्थना सुन करके मन ही मन में स्थिर किया इस जन्म में मैं नहीं कुछ कर सकता, तब हाँ तुम लोग द्वापर युग में गोपियों के गर्भ से जन्म लेना और मैं उस समय में कृष्ण बन करके आऊंगा और सारी जो गोपियां तुम लोग बनोगे उससे हमारा संपर्क होगा, तुम गोपी बन करके हमारी सेवा कर सकते, तुमको अंगीकार कर लूंगा। शूर्पणखा जिसका नाक कान काट लिया वो भी ब्रज में पहुंच गई, कैसे ऐसे पहुंची, राम के रूप को देख करके वो मुग्ध हो गई, राम के पास में गई, मेरे समान सुंदर और आपके समान सुंदर युवा कोई नहीं, मैंने तो अपना दिल आपके ऊपर में न्योछावर कर दिया है। राम ने तो मन ही मन सोचा जैसे मैं तो वंशा कर उत्तर हूं, मैंने तो ग्रहण कर लिया किंतु बाहरी रूप में नहीं ग्रहण कर सकता एक सीता के अतिरिक्त, अच्छा ऐसा करो इसका नाक कान काट लिया जाए ना तो कोई इसे शादी नहीं करेगा, इसलिए ये बच जाएगी और दूसरे जन्म में जब तक हमसे नहीं मिलेगी तब तक खुबड़ी बना करके रखो, जे कंस के दरबार में भी जाने पर कंस इसको छेड़छाड़ न कर सके या कोई भी दूसरा छेड़छाड़ न करे, इसलिए उसे कुबड़ी बना दे किंतु मुख बड़ा सुंदर बनाए, जब कृष्ण से मिली तब कुबड़पन को ऐसे कर करके बड़ी सुंदरी करके उसे भी ग्रहण कर लिया। आप लोग जानते हैं कृष्ण नरकासुर के जेल खाने में पड़ी हुई 16,108 कितनी सब थी रानियां थी राजकुमारियां थी जिनको पकड़ करके नरकासुर ले गया था, अपने भोग के लिए लिया गया था, कृष्ण उसे मार करके उनका उद्धार किया। बोले जब तुमको तुम्हारे पतियों के यहाँ बहन भेज दूँ, तो जब पति अब नहीं ग्रहण करेंगे, मैया नहीं ग्रहण करेंगी, हमारे भाई नहीं करेंगे, हमारे पिता नहीं ग्रहण करेंगे, अब हम तो आपके चरणों में ही रहेंगी, आप अपने दासियां हमें बना दे, आपके घरों में बर्तन मजेंगी, सब काम करेंगी, झाड़ू देंगी, किंतु अब आपको नहीं। कृष्ण जी ऐसी बात तो चलो मैं पटरानी बनाऊं, और सबको 16,000 ले जाकर के वहां पर पटरानी बनाया कि नहीं। ऐसा दयालु कौन जगत में है कृष्ण जैसा, जिनका भजन छोड़ करके हम ये गणेश जी और सब देवताओं की उपासना करें। ये भगवान की विभूतियां हैं, जगत की चीजें देते हैं किंतु नश्वर देते हैं, ऐसा क्यों? हम कृष्ण का भजन, तो वो सब लोगों की इच्छा पूर्ण करनी है, कैसे पूर्ण होगा? इसलिए योग माया को आदेश दिया, योग माया ब्रह्मा जी के हृदय में पहुंच गए और उन्होंने सोचा कि मैं ही कर रहा हूं, हम कुछ भी करते हैं बिना भगवत शक्ति के नहीं कर सकते, किंतु समझते क्या है? मैंने किया। घर किसने बनाया? मैंने किया। मंदिर किसने बनाया? मैंने किया। तुमने क्या किया? खा ये तो यहाँ के लोगों ने सब पैसे एक एक दिए तब तो ये बना, तुमने क्या किया? अभिमान मत रखो, खुद तुम कुछ भी नहीं है, श्वास भी ले रहा है भगवान की कृपा से ले रहा है, ऐसे समझो। तुमको गर्भ में किसने सेवा की, बचाया किसने, याद रखो किसने किया? वही प्रभु ने। जन्म किसने दिया? माता पिता ने नहीं, नहीं तलाक को 5 स्त्रियां और पुरुष पड़े हुए हैं, उनको पुत्र नहीं मिलता। इसलिए यह सबके मूल सर्व कारण कारण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद, ये गोविंद ही, ये राधा रमण ही सर्वस्व है। इसलिए जोग माया जी ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश करके और उसने कहा कि एक ही साथ भगवान के बहुत से काम पूरा होंगे, इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जब बच्चे खा रहे थे अगासुर के बाद में, जबकि उनके चरणों में मिल गए, तो वो कोई बहाना ढूंढने लगे कि कैसे इनको मैं परीक्षा करूं या कैसे मैं इनकी लीलाओं को देखूं। इसलिए वो क्या करने लगे, ये लोग जब खाने में मत्त हो गए तो जितने बछड़े थे वो चरते हुए घासों के लोभ से आगे बढ़ गए, कृष्ण को पीछे कर दिया। ये पीछा करना ही बड़ा भारी खतरनाक है, कृष्ण के सुन्मुख हो, उन्मुख हो, विमुख मत बनो। जहां कृष्ण के विमुख हुए सेवा के, वैष्णव के विमुख हुए, उन्मुख और विमुख समझ रहे हैं ना, उन्मुख माने उनके तरफ में मुंह और विमुख माने इन लोगों ने जो है कृष्ण के तरफ में अपना पीछा कर दिया और मुंह कर दिया सामने घाटों के तरफ में, ये ख्यास क्या है? इंद्रियों का सुख है। इसलिए थोड़ी देर में ब्रह्मा जी को सुजोग मिला और वो बच्चनों को लेकर के एक कंदरा में बंद कर दिया। अब वो लोग देखने लगे कि भाई बछड़े किधर गए, ये तो हमारे गोधन है, कहां गए? ढूंढने लगे। कृष्ण कहा कि तुम लोग बैठो खाओ, मैं अकेले अभी चढ़ता हूं बंसी बट पर और वहीं से बंसी बजाऊंगा और वहीं से उनको बुलाऊंगा और वो झट वहीं से आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने चेष्टा की और हाथ में क्या किया, हाथ में कवल दधी और अन्न का और बंसी को फेंटे में लगा दिया, कुछ मुख सूख सा गया जैसे आदमियों का होता है कोई चीज गुम होने पर। आज गोपियां क्या कहेंगी, यदि बछड़े नहीं लौटे और हमारे सखा लोग ब्रज में नहीं लौटे तो हमारी क्या दशा होगी, मैं कैसे मुख दिखाऊंगा, कैसे ब्रज में लौटूंगा। मानो भगवान को ऐसी भावना, भगवान की भगवत्ता ब्रज में एकदम भूल जाते हैं, यशोदा जी उनका कान पकड़ेंगे, कृष्ण रोएंगे, इसलिए वहां पर भगवत्ता उनकी काम नहीं चलती ब्रज में। इसलिए सोच रहे हैं और इतने में कृष्ण खोज रहे हैं, इतने में ब्रह्मा जी ने उनके सखाओं को भी लेकर के एक दूसरे कंदरे में बंद कर दिया। कृष्ण भाई सोच रहे हैं कहां गए बछड़े, खोजते खोजते जब नहीं मिले तो लौटे उसी स्थान पर जहां पर की भांडी वन में जहां पर की भोजन कर रहे थे बच्चे लाखों, देखा कि बच्चे भी नहीं, हमारे सखा कहां गए। अच्छा थोड़ा सा आंख बंद किया, अरे ठीक है ठीक ठीक बहुत अच्छा बहुत, अब हमको एक ही साथ में बहुत से काम करने हैं। साथ ही साथ जितने उनके साथ में बच्चे थे वो बच्चे बन गए, कृष्ण स्वयं उनकी लठिया बन गए, उनकी कंबलिया बन गए, उनकी बंसी बजी बन गए, और उनका जैसा स्वर जैसा स्वभाव सब कुछ कृष्ण ही बन गए। इसके बाद में क्या हुआ, जितने उनके साथ में बछड़े थे वो सब बछड़े भी बन गए। अब घर में जब लौटे बच्चों को लेकर के और बच्चों को लेकर के, उनकी मैयाओं ने आज उनकी इच्छा पूर्ण हुई, उनके बच्चे बने हुए हैं कौन, स्वयं उन्होंने आज अपने बेटे से भी अधिक कृष्ण को प्रेम करके चुंबन करके आलिंगन करके आरती उतार करके घर में ले गई। आज कृष्ण को भूल गई। आज यशोदा मैया केवल कृष्ण की आगवानी कर रही हैं, उनका स्वागत और आरती उतार रही हैं, और दूसरे दिन सभी माएं वहां पर उपस्थित हो जाती थी माताएं, और कृष्ण को पहले गोदी में लेकर के चुंबन करके आलिंगन करके आशीर्वाद देकर के तब अपने बच्चों को गोद में लेती। आज हो गया उल्टा, अब कृष्ण को भूल, क्यों, कृष्ण और बच्चे दोनों आज एक। और गैया क्या हुआ, अपने नए बच्चों को भी छोड़ करके ये पुराने जो बच्चे हैं उनका चाटने लगे, मानो अपने हृदय में ले लें अत्यंत अधिक स्नेह। आज कृष्ण एक ही कृष्ण आज इतने बछड़े बन करके गायों की इच्छा पूर्ण कर दी और माताओं की इच्छा पूर्ण कर दी। और